समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
जिंदगी हो या शाम ढलती जरूर है और उम्मीद हो या सूरज उगता जरूर है। नमस्कार, सुप्रभात। तो नई सुबह है, नया सवेरा है और सूरज भी उग चुका है, तो नई उम्मीदों के साथ हाजिर है आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आज सवेरे कार्यक्रम में एक बार फिर लेकर देश और दुनिया के अब तक के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के संग के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार और शगुन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
गुड मॉर्निंग जया, नमस्कार, हेलो, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स एंड वेल यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। सो जया, लेमनी स्निकेट सेज मॉर्निंग इज एन इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ द डे बिकॉज हाउ यू स्पेंड योर मॉर्निंग इट कैन ऑफन टेल यू व्हाट काइंड ऑफ डे यू आर गोइंग टू हैव। सो स्पेंड इट वाइजली एंड लिसनर्स, इफ यू विल बी विद अस, वील गिव यू इन दिस रफली हाफ एन आवर इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू टूडे। टूडे इज 13th of December, 13/12/25।
बिल्कुल, और श्रोताओं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि वहां हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र में भारत द्वारा प्रस्तावित विषय को अपनाया गया है। यह विषय है जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करना। भारत द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। इससे विश्व स्तर पर जंगल की आग के बढ़ते खतरे से निपटने की तत्काल आवश्यकता की वैश्विक मान्यता मिली। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इस बात पर बल दिया है कि जंगल की आग वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक बनकर उभरी है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य जंगल की आग के प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर के क्षेत्रों में जंगल की आग की संख्या, पैमाने और तीव्रता में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने बेहतर योजना, पूर्व चेतावनी और समय पर जोखिम कम करने के उपायों से राहत कार्रवाई की जगह सक्रिय रोकथाम की ओर आगे बढ़ने का भी आह्वान किया है।
The Election Commission has appointed special role observers, SROs, to oversee the special intensive revision, SIR, of the electoral rolls in 8 major states. The observers have been assigned to West Bengal, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Rajasthan. The poll body said the observers have already commenced their work and are expected to be present in these states for 2 days each week until the publication of the final electoral rolls in February 2026. Their mandate is to ensure that the revision exercise is carried out smoothly and transparently. The special role observers will meet political parties at both the state and district levels to hear their views and address concerns related to the revision process. They will also participate in meetings with chief electoral officers and district electoral officers, either physically or through virtual platforms, to ensure that the entire process is completed in a smooth, transparent and participatory manner. They will observe the process of SIR so that no eligible elector is left out and no ineligible person is included in the electoral rolls.
श्रोताओं, पूरा देश आज संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा कर्मियों और बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2001 में आज ही के दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्य आज संसद भवन परिसर में बलिदानी सुरक्षा कर्मियों को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
Hyderabad has geared up to host Argentine football legend Lionel Messi during his GO tour of India today. He will make an appearance at Rajiv Gandhi International Stadium in Uppal later in the evening, where he will feature in an exhibition match, among other things, in a packed itinerary. The exhibition event will have two teams, one led by Messi and the other by Telangana Chief Minister A. Revanth Reddy. As per the organizers, Messi will be reaching Hyderabad by 7:30 p.m. and will play an exhibition match. The organizers are calling it the GOAT Cup, and Messi will present two cups, one for each team. Messi will also do a football clinic and play with 24 children across the stadium. 60% of them are underprivileged children from across Telangana. There are two cultural events. I beg your pardon, there are cultural events planned for the fans too. Messi is set to take part in a parade alongside two other football stars, who are Luis Suarez and Rodrigo de Paul. And it will be followed by a felicitation ceremony. The Telangana police have made elaborate security arrangements in and around Uppal Stadium.
बिल्कुल. और फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेस्सी अभी कोलकाता पहुंच चुके हैं. हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हजारों प्रशंसक कड़ाके की ठंड के बीच मेस्सी की एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़े. बार्सिलोना फुटबॉल क्लब के मेस्सी, लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के साथी खिलाड़ी रोड्रिगो डी पॉल के साथ कोलकाता आए हैं वे. और अर्जेंटीना के सुपरस्टार की भारत यात्रा 14 साल बाद हो रही है.
14 years.
शगुन, और ये सोचो कि आप फुटबॉल प्रेमियों के लिए कितनी बड़ी बात होगी. वे 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो अभी जैसा कि आपने जिक्र किया वो हैदराबाद जाएंगे. इसके अलावा वे मुंबई और नई दिल्ली भी आएंगे. इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और फुटबॉल प्रदर्शन शामिल हैं. कोलकाता में मेस्सी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिनमें एक मुलाकात सत्र और मेस्सी की 70 फुट ऊंची प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण भी शामिल है. इसके बाद मेस्सी हैदराबाद के लिए रवाना होंगे, और हैदराबाद में अपने कार्यक्रमों के बाद मेस्सी मुंबई और दिल्ली जाएंगे.
Well, fans are excited. Now in squash, second seed India will take on defending champions Egypt in the semi-finals of Squash World Cup in Chennai today. Top seeds Hong Kong will face Japan in the other semi-final. So India stormed into the last four with a commanding 3-0 victory over 7-seed South Africa, while Egypt eased past Australia 3-0 in the quarterfinals yesterday. So this is the second consecutive time India have qualified for the semi-finals of the Squash World Cup, having made it to the last four in the 2023 edition of the tournament as well. So early in the tournament, India had defeated Switzerland and Brazil to progress to the quarterfinals.
और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं वहां का हाल. सबसे पहले शुरुआत
चेन्नई से. So in Chennai, the Election Commission of India, ECI, has appointed 12 electoral roll observers for the ongoing special intensive revision of electoral rolls with reference to January 1st as the qualifying date. Chief Electoral Officer of the state, Archana Patnaik, had a comprehensive briefing session with all of the observers in connection with SIR. She elaborated on the roles, responsibilities and duties of the electoral roll observers during the revision period. The observers were requested to ensure close monitoring of the revision activities and to provide necessary guidance to district officials. The observers were also informed that they are required to visit each district under their charge at least 3 times during the entire SIR period to review progress, address issues and ensure adherence to the Election Commission's guidelines. Now over to you, Jaya. Let's provide our listeners Delhi's updates.
बिल्कुल. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का समय है. अब बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि राजधानी में जिले अब 11 से बढ़ाकर 13 कर दिए जाएंगे. एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने बताया कि 15 दिनों के भीतर राजपत्र अधिसूचना जारी किया जाएगा और इस संबंध में आदेश इसी महीने लागू होगा. उन्होंने बताया कि नए जिलों के निर्माण में 25 करोड़ का बजट तैयार किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि उनकी सरकार धूल प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी में चौतरफा सड़कों के निर्माण की त्वरित योजना पर काम कर रही है. धूल प्रदूषण शहर की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक है. शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य में कोई देरी न हो, इसके लिए विधायकों को करोड़ों रूपये की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है. दिल्ली से एक और खबर है कि दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि भूमिगत जलाशय और बूस्टर पंपिंग स्टेशन की सालाना मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के कुछ इलाकों में 16 और 17 दिसंबर को पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी. जल बोर्ड के अनुसार मयूर विहार फेज 1, फेज 3, सूरजमल विहार, विश्वास नगर, कस्तूरबा नगर, योजना विहार, श्रेष्ठ विहार और ज्वाला नगर में 16 दिसंबर को पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी. वहीं 17 दिसंबर को DDA फ्लैट्स, MIG झिलमिल क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी जरूरत के हिसाब से पहले से पानी इकट्ठा करके रखें। पानी के टैंकर टेलीफोन नंबर है 1916।
Well now let's proceed. We'll tell you about Bengaluru. Karnataka Forest Minister Ishwar B. Khandre has said that BK Rani Chennamma Mini Zoo near Belgavi will be improved. While inspecting the enclosures being built in the zoo, he informed that different varieties of snakes and crocodiles will be brought here. So the crocodile enclosure is being built at the cost of 50 lakh rupees and the snake enclosure built at a cost of 40.8 lakh rupees. So two crocodiles and 12 varieties of snakes will be enclosed here. A screen is erected in the zoo and soon films providing information on wild animals and about the zoo and its inmates. He further said that 5.85 crore rupees is being spent to improve parking slots in the vicinity of the zoo. So he hoped, the minister hoped, that the works would be completed in the first week of January. The minister informed that freedom fighter Veeravanite Kittur Rani Chennamma statue will be erected in the premises. So Khandre said that glass is being put up at the bird's enclosure. This will help visitors to view them clearly and click photos. He hoped that the improvements planned in the zoo will attract more visitors.
अब चलते हैं भारत की औद्योगिक राजधानी के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र की ओर, जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि महाराष्ट्र ने वैश्विक क्षमता केंद्र हब बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ब्रुकफील्ड मुंबई में लगभग 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगा। इस परियोजना से 15,000 प्रत्यक्ष और 30,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 45,000 रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि राज्य में प्रतिभाओं की प्रचुरता, मजबूत बुनियादी ढांचे और उद्योग अनुकूल वातावरण के कारण महाराष्ट्र वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए पसंदीदा गंतव्य बनता जा रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा है कि अपराध नियंत्रण के लिए AI के उपयोग का महाराष्ट्र का मॉडल पूरे देश के लिए एक मार्गदर्शक उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री ने कल जियो कन्वेंशन सेंटर में आयोजित माइक्रोसॉफ्ट AI टूर कार्यक्रम में यह बात कही थी। इस कार्यक्रम के दौरान सत्य नडेला ने साइबर आई द्वारा महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से विकसित महाक्राइम OS AI प्लेटफॉर्म का प्रदर्शन किया। और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने मुंबई मेट्रो लाइन 12 के निर्माण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। डोंबिवली MIDC मेट्रो स्टेशन के पास शिलफाटा रोड पर 100वें यू गर्डर का सफल प्रक्षेपण किया गया, जो परियोजना की प्रगति में एक महत्वपूर्ण चरण है। यह उपलब्धि निर्माण कार्य की गति को और तेज करेगी और लगभग 23 किलोमीटर से अधिक लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर कल्याण, डोंबिवली, तालुजा और आगे नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच एक हरित निर्बाध और तेज संपर्क प्रदान करेगा, जिसमें 19 मेट्रो स्टेशन होंगे।
We are heading now to Hyderabad. In Telangana, the ordnance factory MEDOK has conducted the annual flotation trials of infantry combat vehicles indigenously manufactured at its Riedu Melaram facility in Sangareddy district. This happened yesterday. So the trials have been held under the supervision of Ordnance Factory MEDOK CGM SS Prasad at Malkapur Lake. So the annual flotation trials validated the amphibious capability and terrain handling performance of infantry combat vehicles. So the annual testing, it is mandatory for the infantry combat vehicles before they are handed over to the Indian Army.
और अब समय है कोलकाता के समाचारों का। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने विद्यालय सेवा आयोग को उन अधिक आयु वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार बुलाने का निर्देश दिया है जो 2016 की विद्यालय सेवा आयोग यानी SSC परीक्षा में प्रतीक्षा सूची में थे और जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पिछली परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इस वर्ष पुनः परीक्षा सफलतापूर्वक तीर्ण की थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने यह आदेश 2016 की परीक्षा के कई प्रतीक्षा सूची में शामिल उम्मीदवारों के बाद सुनाया, जिन्होंने SSC 2025 की पूर्ण परीक्षा उत्तीर्ण की थी और साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति मांगने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। तो राजधानी दिल्ली में आज मध्यम कोहरे का अनुमान है। शहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर मुंबई की बात करें तो आज आसमान साफ रहेगा। शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस का अनुमान व्यक्त किया गया है। और जॉय सिटी कोलकाता में आज सुबह हल्की धुंध रहेगी, हालांकि दिन में आसमान साफ हो जाएगा। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से।
Yes, Jaya, I'm beginning with Chennai. It is expected to have generally fog mist in the morning and partly cloudy sky later. The minimum temperature was 23 degrees Celsius and maximum will be around 29 degrees Celsius. Now, if I talk about Bengaluru, it is expected to have mist. The minimum temperature was 15 degrees Celsius and maximum will be around 28 degrees. Hyderabad, expected to have mainly clear sky, becoming partly cloudy towards afternoon or evening. The temperature, minimum temperature, will be around 12 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees Celsius there, Jaya.
और श्रोताओं, अब वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की। हालांकि हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन वर्ष 2001 में भारत में हुए एक आतंकी हमले से दुनिया हैरान हो गई थी। देश में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, संसद सत्र चल रहा था, सबकी निगाहें संसद पर थी, लेकिन 11 बजे एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया और यह खबर थी भारत की संसद पर आतंकवादी हमले की। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध हो गया था। सफेद रंग की एम्बेसडर कार में सवार आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकी अपवित्र कर पाते उससे पहले ही भारत की सुरक्षा बलों के मुस्तैद जवानों ने उन्हें ढेर कर दिया। हालांकि इस हमले में दिल्ली पुलिस के 6 जवान, संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान और एक माली बलिदान हो गए थे।
And our tributes today to the security personnel and victims who lost their lives while defending Parliament during this terrorist attack on this day in 2001. Now, listeners, let's take you way back in time. In the year 1642, Dutch navigator Abel Tasman became the first European to sight South Island, New Zealand.
और आज ही के दिन 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन प्रिंस ऑफ वेल्स ने किया था, जो बाद में किंग एडवर्ड 8 बने थे। हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय और अन्य लोगों द्वारा की गई थी और शिक्षण कार्य पहले से ही चल रहा था, लेकिन 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के समय में विश्वविद्यालय के नए भवनों में पढ़ाई शुरू की गई और इसका उन्होंने उद्घाटन किया था।
In 1934, British astronomer J.P.M. Prentice discovered Nova Hercules, one of the brightest novas of the 20th century. In 1950, one of Hollywood's brightest careers kicked off when James Dean got featured in a TV commercial for Pepsi Cola. So 5 years later, movie roles in East of Eden and Rebel Without a Cause made him famous. In 1961, Indian cricketer legend Mansoor Ali Khan Pataudi began his test career against England in Delhi.
और मैं श्रोताओं को थोड़ा और पहले ले जाना चाहूंगी 1921 में, जहां वाशिंगटन सम्मेलन के दौरान अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, जापान और फ्रांस के बीच 4 पावर संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें प्रशांत क्षेत्र से जुड़े किसी भी मुद्दे पर विवाद होने पर चारों देशों से सलाह लेने का प्रावधान था, जिससे पूर्वी एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहे। और वहीं 2012 में दृष्टिबाधित T20 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 30 रनों से हराकर विश्व विजेता का खिताब अपने नाम किया था।
गोइंग लिटिल बैक इन 1992, वेल 10 इयर्स बैक, मेनन रोमा बिकेम द फर्स्ट वुमन टू प्ले इन अ रेगुलर सीजन प्रोफेशनल हॉकी गेम इन 2003। देन इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन वाज कैप्चर्ड बाय यूएस फोर्सेस ड्यूरिंग द इराक वॉर।
और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन को। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता दोनों सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा था। राष्ट्रीय भावनाओं की बुनियादी को लेकर लक्ष्मीचंद जैन की कुछ स्मृतियां तथा संस्मरण बेहद रोचक रही हैं शगुन। अगर एक बार क्या हुआ था कि बेहद किटकिटाती सी सर्दी थी, एकदम सुबह लक्ष्मीचंद के पिता उन्हें गांधी जी की एक जनसभा में लेकर गए। इस पर गांधी जी ने उनके पिता को डांट लगाई कि वे ऐसे मौसम में छोटे बालक को लेकर क्यों आए हैं। उनके बाद लक्ष्मीचंद को गांधी जी ने स्वयं शॉल ओढ़ाया और मेवे खाने को दिए थे। इसी तरह एक बार लक्ष्मीचंद पंडित नेहरू का भाषण सुनने के लिए गए थे और भीड़ में गुम हो गए थे। फिर पंडित नेहरू ने उन्हें स्वयं खोज कर गोद में उठाया और फिर उनके पिता को सौंपा। अगर 1947 के अंतिम दिनों में उनकी भेंट एक कैंप में कमला देवी चट्टोपाध्याय से हुई थी। इसके बाद सन 1948 में जैन ने कमला देवी के साथ एक इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की। सन 1968 में उन्होंने एक कंसल्टिंग फर्म भी खड़ी की, जो किसानों और कारीगरों की सलाह पर एक सरकारी तथा गैर सरकारी कामकाज में मदद करती थी। इस तरह लक्ष्मीचंद जैन ने किसानों, कारीगरों और स्त्रियों के समूह तथा सरकारी कमेटियों और बोर्ड के बीच एक सेतु की भूमिका अदा की, जिसका लाभ उन्हें मिला। उनके कार्यों के लिए और उनके सूझबूझ भरे कामों के लिए 1989 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था।
Now let's tell you about an ancient and ingenious Pathani Samant, brilliant astronomer, made significant contributions to astronomy, and this includes improving the calendar system, second one, correcting planetary motion, third, determining lunar anomalies. So the visionary astronomer Pathani Samant and scholar is especially known for his remarkable fact of measuring the distance between the sun and the earth, Jaya, using simple tool like a bamboo pipe. So his work has left an unforgettable legacy in the world of astronomy.
बिल्कुल। और आज ही जयंती है भारतीय मूल की अमरीकी प्लास्टिक सर्जन और द इंडिया प्रोजेक्ट के संस्थापक शरद कुमार दीक्षित की। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में पंढरपुर में जन्मे शरद जी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी के मुफ्त इलाज के लिए एक सामाजिक पहल की थी। उन्हें कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया और वर्ष 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था।
Well, we're also remembering Manohar Gopal Krishna Prabhuparikar. So the politician, and well, he served as the 8th Chief Minister of Goa, going on to serve a total of 4 times between 2019 from this spans from 2000 and 2019. So in 2020, he was posthumously awarded Padma Bhushan. And this is also interesting to know that he was the first IIT alumnus to serve as MLA and the first IITian to become the Chief Minister of a state in India and also the first Chief Minister of a state. Well, he continued in office for over a year despite being diagnosed with terminal stage cancer. We were telling you about Manohar Gopal Krishna Prabhuparikar.
और आज ही जयंती है फिल्म निर्माता दाटला वेंकट सूर्य नारायण राजू की, जो तेलुगु सिनेमा और बॉलीवुड में अपने काम के लिए डीवीएस राजू के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने तेलुगु फिल्म उद्योग को चेन्नई से हैदराबाद स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें रघुपति वेंकय्या पुरस्कार, भीष्म पुरस्कार और 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डीवीएस राजू का जन्म 13 दिसंबर 1928 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने 1950 में डीवीएस प्रोडक्शंस बैनर की स्थापना की और डीवीएस राजू ने एंटी रामाराव अभिनीत कुछ लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण किया, जैसे पिदुग रामुडू, चिन्नानाती, स्नेहितुल और भी ना जाने कई। तो उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में जीवत नौका, जीवन ज्योति, चाणक्य सपधाम, पिची पुलैया हैं। जीवन ज्योति ने उन्हें नंदी पुरस्कार दिलाया था।
Well, listeners, today we are also remembering Smita Patil. Well, renowned for her exceptional talent and powerful performances, Jaya, in both Hindi and Marathi cinema as well. One of the finest actresses in Indian film, in the Hindi cinema and the Marathi as well, Marathi cinema. Well, Smita's career was designed by her ability, defined by her ability to portray a diverse range of characters with depth, authenticity and emotional intensity, right, Jaya?
बिल्कुल, और अगर हम बात करें स्मिता की, तो उन्होंने अपने सशक्त अभिनय और एक जो पैरेलल सिनेमा होता है ना, उसके साथ साथ व्यावसायिक सिनेमा में भी बहुत खास पहचान बनाई थी। उत्कृष्ट अभिनय से सजी उनकी फिल्म में भूमिका मंथन, चक्र, शक्ति, निशांत और नमक हलाल आज भी दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। भारतीय संदर्भ में स्मिता पाटिल एक सक्रिय नारीवादी होने के अलावा मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी रही थी। वे महिलाओं के मुद्दों को पूरी तरह से वचनबद्ध रहती थी और प्रसार भारती को दिए गए एक साक्षात्कार में भी उन्होंने महिलाओं के बारे में बात की थी।
क्या है, औरतों का जो रूप बनाया गया है वो इतनी बरसों से बनाया गया है कि कमजोर उसको दिखा के उसको और कमजोर किया जाता है, लेकिन आप इतनी जल्दी से बहुत ही पावरफुल औरत अगर दिखाएं, जैसे सुबह नाम की जो फिल्म है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगी, जिसमें ये औरत मिडिल क्लास की एजुकेटेड होते हुए भी एक फैमिली, अपर मिडिल क्लास एजुकेटेड फैमिली स्ट्रक्चर तोड़ के सिर्फ एक रिमांड होम की सुपरिंटेंडेंट बनने का जॉब करने के लिए भी जाना इतना मुश्किल है। जब फैमिली से झगड़ा करके वो जब जाती है तो अपना पति जो लॉयर है और बेटी को छोड़ के जाती है, और वहां जाके तो और ही भयानक एक्सपीरियंस है।
शगुन, पता है स्मिता की फिल्मों में भी नारीवादी की झलक देखने को मिलती थी और ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने निडर महिला की भूमिका पेश की है।
तो चुपचाप मार खा के चलाया, याद रख, लोगों को अपनी चीजें छीनने देगा तो लोग तुम्हारी जिंदगी तक छीन लेंगे। अगर मुझे माँ कहना चाहता है तो जा उसे मार जिसने तेरा खाना छीना है, भाग कर मत आ ताकि मुझे लगे मेरे बेटे में किसी से भी लड़ने की हिम्मत है।
Well, yes, Smita Patil has been a prominent figure in India's parallel cinema movement, contributing significantly to socially relevant and thought-provoking films.
जी, तो सुनते हैं फिल्म आखिर क्यों से उन पर फिल्माया गया ये गीत।
दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है।
इस गीत के बोल लिखे थे इंदिवर ने और गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और अमित कुमार ने। अब सुनते हैं 1976 में बनी फिल्म मंथन का यह गीत, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया था।
मैं तो देखूं तारी बात दिन बीते नहीं रात, कौन कहूं दिली बात, मैं तो थाकी रे।
इस गीत को नीति सागर ने लिखा था, संगीतबद्ध किया था वनराज भाटिया ने और आवाज दी थी प्रीति सागर ने। भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी फिल्मों के अलावा स्मिता पाटिल ने मराठी, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी अपनी खास पहचान बनाई।
Well, her illustrious acting career showcases her range across genres. Well, listeners, today it is also Taylor Swift's birthday, the winner of 14 Grammy Awards, and this includes a record 4 Album of the Year wins. She has made an impact as a songwriter, as a cultural figure as well.
आज जन्मदिन है प्रसिद्ध भारतीय तेलुगु फिल्म अभिनेता दगुबति वेंकटेश का। तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया। हिंदी भाषी दर्शक उन्हें तकदीर वाला और अनाड़ी जैसी हिंदी फिल्मों के लिए जानते हैं। तकदीर वाला में उन्होंने एक ऐसे बेटे का रोल अदा किया है जो अपने माँ से बेहद प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता है।
तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जा जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तक खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है।
अब सुनते हैं अनाड़ी फिल्म में करिश्मा कपूर और वेंकटेश पर फिल्माया गया यह गीत।
रंग
इस गीत के बोल समीर ने लिखे हैं, संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिन ने और आवाज दी है उदित नारायण ने। वेंकटेश किसी का भाई किसी की जान जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाने जाते हैं, जहां उन्होंने सलमान खान के साथ काम किया। श्रोताओं, और अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय।
नमस्कार।